अगला चैप्टर है पानी के मसाइल। पानी पाक है और पाक करने वाला है। अन अबी हुरैरा रदी अल्लाहु अन्हु काल सअला रजुलुन रसूल अल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाला या रसूल अल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना नरकबुल बहरा व नहमिलु मानल कलील मिनल माई फ़इन्ना। इसको भी ठीक कीजिए, फ़इन नून पे जज़्म होगी, फ़इन तवद्दना बिही अतिश्ना अफन तवद्दउ बिमा अल्बहरी फ़काल रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवत तहूरु मा उहुल हिल्लु मैततुहु रवाहु अहमद व अबू दाऊदु व नसाई व तिरमिजीयु व इब्नु माजा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हो कहते हैं, एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम समंदर का सफ़र करते हैं तो थोड़ा सा पानी साथ ले जाते हैं, अगर इससे वुज़ू कर ले तो प्यासे रह जाएं, क्या हम समंदर के पानी से वुज़ू कर सकते हैं? आपने फरमाया, समंदर का पानी पाक है और इसमें मरा हुआ जानवर यानी मछली हलाल है। इसे अहमद, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी और इब्ने माजा ने रिवायत किया। इससे देखिए कि जो बातें मालूम होती हैं, पहली बात है कि समंदरी सफ़र सहाबे कराम के दौर में ही शुरू हो चुके थे। फिर दूसरी बात है कि पानी की किल्लत होती थी तो साथ घर से पानी पीने के लिए लेके जाते थे, लेकिन चूंकि समंदर में पानी तो होता है और वो पीने के काबिल नहीं होता, तो उन्होंने पूछा कि क्या हम पानी के सब वज़ू करें? तो आपने कहा कि कोई हरज नहीं। इससे क्या पता चलता है कि बहता पानी जो है वो पाक होता है। ये एक छोटा सा असूल याद रखिए कि बहता पानी पाक है, यानी समंदर का पानी पाक है। ठीक है आप ना पिए, आपको उसमें नमक लगता है, वट एवर, इस ओके, लेकिन असल के एतबार से वो पाक है, क्लीन है। दरिया का पानी है, पाक है। चश्मा है, आबशार है, पाक है। पीछे रह जाते हैं वो पानी जो खड़े हुए पानी है, मसलन जैसे स्विमिंग पूल्स के अंदर आप देखें, या आप कोई ऐसी पानी का जोहड़ है उसके बारे में फिर आपको देखना होगा। क्या देखना होगा ये अगली रिवायत से हमें पता चलेगा। पाक चीज़ पानी का रंग या जायका दोनों बदल दे तब भी पानी पाक ही रहता है। अन उम्मे हानी रदी अल्लाहु अन्हा कालत इख्तसला रसूल अल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवा व मैमूनत रदी अल्लाहु अन्हा फी कस अति फी हा असरुल अजीन रवाहुन निसाई। हज़रत उम्मे हानी रदी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैमूना रदी अल्लाहु अन्हा ने एक टब के पानी से गुसल किया। पानी में गुंधे हुए आटे का असर था। इसे निसाई ने रिवायत किया। इस हदीस से जो बातें मालूम होती हैं, पहली बात यह है कि शौहर और बीवी एक ही बर्तन से गुसल कर सकते हैं। दूसरी बात पता चलती है कि उस दौर में इतनी कमी थी बर्तनों की कि वही बर्तन जो आटा गूंदने के लिए इस्तेमाल होता था उसी में पानी जमा करके गुसल के लिए भी इस्तेमाल होता था। तो इसमें कोई कबाहत की बात नहीं। जाहरी बात है कि अगर गुसल के लिए इस्तेमाल होगा तो बाद में उसको धो लिया जाएगा। फिर अगली बात इससे पता चली कि अगर आटा बीच में थोड़ा सा मिल गया, अब आटा तो पाक है ना, तो पानी गंदा नहीं होता। तो मेयार क्या है? पाक चीज़। यहाँ आटा पाक चीज़ है ना, क्लीन चीज़ है। पानी का रंग या जायका बदल दे, क्योंकि जब पानी में आटा मिलेगा तो थोड़ा सा रंग तो बदलता है ना, धुंधला सापन आ जाता है, ठीक है। और अगर आप चखें तो उसमें आटे का हो सकता है टेस्ट भी आ रहा हो, लेकिन चूंकि ये पाक चीज़ है तो पाक है। तो इससे क्या पता चला कि पानी में अगर कोई चीज़ गिर जाती है या किसी वक्त वो पानी ऐसा है कि उसमें कोई आपको फील हो रहा है कि किसी चीज़ का असर है, तो आप फिर भी कर सकते हैं। अब इसका ये नहीं मतलब कि आप रूह अफ़ज़ा शरबत बनाएं और वज़ू करना शुरू कर दें, मक्खियाँ चिपकेंगी तो आप खुद ही छोड़ देंगे, लेकिन शरण कर सकते हैं, ठीक है। यानी पाक चीज़ से रंग और जायका दोनों बदल दें। फिर अगली हदीस देखिए, और ये पूरा टॉपिक इकट्ठा होगा तो इस पे फिर कुछ चीज़ें हम अलग से भी देख लेंगे। बिल्ली का जूठा नापाक नहीं होता। मियाँ बीवी दोनों बयक वक्त एक ही बर्तन के पानी से वजू कर सकते हैं। अन आयशत रदी अल्लाह अन्हा कालत कुंतु अतवद्दउ अना व रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन इनाइन वाहिदिन कद असाबत मिनहुल हिर्रतु कबल ज़ालिका, रवाहु इब्न माजा। हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन से वुज़ू करते, हालांकि इस पानी से बिल्ली भी पी चुकी होती। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया। और दूसरी रिवायत आगे, अन अबी कतादत रदी अल्लाह अन्हु अन रसूल अल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات رواه أبو داود والنسائي والترمذي वब्न माजा। हज़रत अबू कतादा रदी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली के बारे में फरमाया, ये नापाक नहीं बल्कि तुम्हारे पास घरों में आती जाती रहती है। इसे अबू दाऊद, निसाई, तिरमिज़ी और इब्ने माजा ने रिवायत किया। तो दोनों बातें बिल्कुल वाज़ हैं, बिल्ली नजस नहीं होती। किसी बर्तन में मुंह डाल ले या अगर पानी भी हत्ता कि उसने पिया हुआ है फिर भी उसको अगर कोई इस्तेमाल करे तो कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स कुत्ते की बात इससे मुख्तलिफ है, उसके लिए अलग से बात आती है और कहीं ना कहीं वो बात आगे आएगी इंशाअल्लाह ताला। इस्तेमाल शुदा पानी में निजासत ना पड़ी हो तो पानी पाक ही रहता है। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह अन्हुमा قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه فأقلت رواه البخاري। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि मैं बीमारी की वजह से बेहोश था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बीमार पुरसी के लिए तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू किया और वुज़ू से बचा हुआ पानी मुझ पर डाल दिया तो मुझे होश आ गया। इसे बुखारी ने रिवायत किया। तो आप देखिए कि वुज़ू जब किया जाता है तो पानी कुछ ना कुछ बच जाता है। आज के और उस दौर के हालात में थोड़ा सा आप फ़र्क समझेंगे। आजकल तो टैप वाटर है, टूटी खोलते हैं और पानी से वुज़ू कर लेते हैं। उस दौर में ये तसव्वुर नहीं था, दूर से पानी लाते थे और छोटे छोटे बर्तनों में जमा होता था। आज भी शायद कुछ ऐसी जगह हों कि जहाँ बराह रास्त पानी नहीं आता तो लोग बर्तनों में पानी जमा करके रखते हैं और उसी से फिर बाकी काम करते हैं। तो ये उस दौर की बात है। तो वो हो या आज किसी भी दौर में हो, अगर पानी के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो वो पाक होता है, कोई हरज की बात नहीं। और ये जो बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचे हुए पानी के छिड़कने से उनको होश आ गया, तो ये सिर्फ अल्लाह के नबी के लिए था। अब आज हम, आप या कोई पीर या कोई इस तरह का बुज़ुर्ग ये अमल नहीं कर सकता, क्योंकि नबी की और एक आम उम्मती के अमल में बहरहाल फ़र्क होता है। छोटी सी सलाह आपकी कराना चाहूँगी। हम उर्दू में क्या कहते हैं कि मैं वजू करने जा रही हूँ, ठीक है? अरबी जुबान में वजू और वुजू में फ़र्क है। मैं वजू करने जा रही हूँ या मैं वुजू करने जा रही हूँ, वाव पे ज़बर होगी या पेश होगी। वुजू अमल है, और वजू उस बर्तन को कहते हैं जिसमें से पानी लेके वुजू किया जाए, ठीक है? तो सही लफ्ज़ क्या होगा, मैं वुजू करती हूँ। तो बहरहाल थोड़ा सा इसको हम देखने की ज़रूरत है। आगे देखिए, पानी में निजासत शामिल हो जाए तो पानी नापाक हो जाता है। अन जाबिरिन रदी अल्लाहु अन्हु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा अन्नहु नहा अन युबाला फिल मा इर्राकिद रवाहु मुस्लिम। हज़रत जाबिर रदी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े पानी में पेशाब करने से मना फरमाया है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। खड़े पानी से क्या मुराद है? मसलन थोड़ा सा पानी कहीं रखा है, जोहड़ है, और ख़ास तौर पे मैं जब भी इस हदीस को पढ़ती हूँ तो मेरे जहन में तो स्विमिंग पूल का तसव्वुर आता है। आज देखिए कि ये एक आम रिवाज है कि लोग पब्लिक स्विमिंग पूल्स में स्विमिंग करते हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं। स्विमिंग में तो हर्ज नहीं होगा अगर उसको बाकी चीज़ों के साथ लेके चला जाए, लेकिन क्या आपको यकीन है कि जो लोग उसमें स्विमिंग करते हैं और कई घंटों के एतबार से करते हैं, क्या फिर वो पानी पाक रहा होगा? और बाद जगह तो ऐसी ऐसी यानी चीज़ें सामने आती हैं कि बात करते हुए भी घिन आती है। तो अगर कोई किसी भी जगह ऐसा यानी मामला हो तो ये चीज़ श्योर की जाए कि क्या वो पानी पाक है, वरना आपके अच्छा कोई बात नहीं, बाद में हम अंदर जाके फिर साफ़ पानी से गुसल कर लेंगे, लेकिन जितनी देर वो आप उस कैफियत में रहे आपका दिल मंद है। तो थोड़ी सी इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, और मेरा ख्याल है इस पे तो कोई कानून लगा ही नहीं सकता। ये तो वही बंदा अपने आप को ऐसी चीज़ों से रोकेगा जिसको अल्लाह का खौफ है या जिसमें खुद भी पाकी और नापाकी का कोई फ़र्क है, वरना आप वहाँ फ़ाइन भी लिख दें तो कौन उसको चेक करेगा? तो बहरहाल ये एक छोटी सी चीज़ थी जो इसमें हमारे सामने आई कि खड़े पानी में पेशाब नहीं करना चाहिए। आप कम अज़ कम अपने बच्चों को इसकी ट्रेनिंग दें। मुझे तो ऐसे लगता है कि माँ के ज़िम्मे तो इतना भारी काम है ना कि उसको तो फिर किसी और चीज़ की फुर्सत ही नहीं रहनी चाहिए अपने बच्चों की परवरिश के दौरान कि इतनी इतनी बातों पे करें। मिसाल है कि आप अपने बच्चों को समर में किसी स्विमिंग कैंप में डलवाते हैं तो उनको पहले से ये बातें बताएं कि बेटा अगर आपको ज़रूरत हो पहले से फ़ारिग होके जाएं, वहाँ से निकल के जाएं, लेकिन वहाँ ना करें। आप ये पसंद करते हैं कि जब आप जाएं तो अंदर किसी और ने भी ये काम किया हो? तो मेरा ख्याल है कि इस बात से तो इंसान फ़ौरन फिर संभल जाता है। अगला बाब देखते हैं, आदाबुल खलाई रफ़ हाजत के मसाइल, यानी टॉयलेट यूज़ करने के मसाइल। बैतुल खला में दाखिल होने और निकलने की मसनून दुआ ये है, अन अनसिन रदी अल्लाहु अन्हो काल कान रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखल खला يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث متفق عليه। हज़रत अनस रदी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला में दाखिल होते तो फरमाते, ए अल्लाह, मैं नापाक जिन्नों और नापाक जिन्नियों से तेरी पनाह मांगता हूँ। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया। अगली भी इसके साथ एक हदीस है, अन आयशा रदी अल्लाहु अन्हा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा खरजा मिनल गाइती काला गुफरानका रवाहु अहमद व अबू दाऊद व निसाइश व तिरमिजिश व इब्न माजा। हज़रत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला से बाहर आते तो गुफरानका या अल्लाह मैं तेरी बख्शिश चाहता हूँ फरमाते। इसे अहमद, अबू दाऊद, निसाई और तिरमिज़ी और इब्ने माजा ने रिवायत किया। तो ये दो दुआएं हैं जो अल्लाह के नबी से मिलती हैं और हमारा भी अमल होना चाहिए। बाथरूम में जाने से पहले इसको बाहर दरवाजे पे खूबसूरत तरीके से लिख के लगाया भी जा सकता है। इसके नीचे तर्जमे पे अगर आप गौर करें तो वाकई फ़ायदा होता है। और अगर आप मिसाल है कि हम यहाँ के लिए भी बनाते हैं तो नीचे नॉर्वेजियन लैंग्वेज में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे भी लोग आ सकते हैं यहाँ जिनको अरबिक नहीं समझ आती या उर्दू समझ नहीं आती, तो फ़ायदा होगा। और आप देखिए कि कितनी मीनिंगफुल दुआ है ना, इससे पता चलता है कि दुआएं सिर्फ सवाब के लिए नहीं पढ़ी जाती, बल्कि हर दुआ का एक असर होता है। खुबूस और खबाइस, जिन्नों और जिन्नियों, नापाक जगहों पे ये गंदी चीज़ें रहती हैं। अब बताइए, जो लोग बिला वजह घंटा घंटा बाथरूम में गुजारते हैं, उनके ऐसा वजह होती है, लेकिन बाहर वालों को नहीं समझ आती कि इतनी देर रहने की क्या वजह है। क्या आप पसंद करेंगे कि ऐसी चीज़ों के साथ रहें? और इसका बहुत गहरा असर है इंसान के अखलाक के साथ। जिसके साथ इंसान का वक्त ज़्यादा गुजरता है ना, उतना ही उसका असर इंसान पे आता है। इसलिए टॉयलेट तो वो जगह है जो इमरजेंसी है, बस आप मजबूरी में गए और फौरन निकल आए। अगर आपको ये एहसास हो जाए ना कि यहाँ कुछ जिन रहते हैं या शयातीन है, तो आपका दिल ही ना वहाँ लगे। और हैरत होती है वो लोग जो अंदर मैगजीन रख के बैठे होते हैं और अंदर जाके उन्होंने पूरे प्लान्स किए होते हैं, और हम इस कल्चर को बुरा ही नहीं समझते। और मैं तो हैरान होती हूँ जब मैं किसी के घरों में कभी ऐसी जगहों पे फिर पाकिस्तानी और ख़वातीन डाइजेस्ट और नावल और अफसाने देखती हूँ कि यही वह जगह रह गई थी आपको आराम फरमाने की। यानी कितनी अजीब कैफियत होती है, सोचते नहीं। टॉयलेट में बगैर वजह के बात भी नहीं करनी चाहिए। बाद लोग अंदर जाके टॉवल मांग रहे हैं, या बच्चे अंदर हैं तो माएँ बाहर से चिल्ला रही हैं, ये अच्छी आदत नहीं है। आपने कहा कि जब इंसान ऐसी जगह पे होता है तो फरिश्ते बाहर रह जाते हैं, आगे भी इसमें बात आ रही है, तो यहीं पे अगर इस पे बात हो जाए, टॉयलेट में कम से कम बात करें। और माँ शुरू से इसकी आदत डालती है, बस बच्चों को जब कमोड पे बिठाती हैं माएँ, या एक पॉटीज होती हैं ऐसी, तो फिर उस पर बिठा के साथ माएँ बातें शुरू कर देती हैं, इसलिए कि बच्चे भागे ना। और वह शुरू से उसको आदत पड़ गई है कि अब टॉयलेट में तो बातें ही करनी है। फिर गाने गाने की हैरत होती है, और हैरत मुझे उस वक्त हुई जब मैंने ऐसा किसी का क्या कहते हैं कि शावर देखा कि जिसमें पूरे स्पीकर्स लगे हुए अंदर, और उसमें और भी बहुत कुछ हो सकता है, आप जो मर्जी सुने और सुनाएं। तो मैंने कहा ये है ना फारिग लोगों के मशगले, मुस्लिम कल्चर नहीं है ये। आपके हम कुरान लगा लेंगे तो क्या कुरान सुन सकते हैं अंदर? आपको लगाना चाहिए। ये चीज़ें लाशौरी तौर पर हमारे साथ में आ जाती हैं। फिर जो इतना पैसा लगाएगा वो वक्त भी तो गुजारेगा। आज भी देखिए, जब घर बनते हैं तो सबसे एक्सपेंसिव चीज़ बाथरूम और किचन होता है। और मैं सोचती हूँ कि आपके तो आपके अपने बेडरूम से ज़्यादा अपने जिन्नों और जिन्नियों का बेडरूम सजाया हुआ है। चलिए, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। ये तो बात हो गई कि जाते हुए खुबूसी वल खबाइस है कि आप अपनी प्रोटेक्शन में आते हैं, अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में आते हैं, क्योंकि आपने कहा कि जब दरवाज़ा बंद किया जाता है तो दूसरों से तो पर्दा कर लिया, तो क्या वो गंदी चीज़ों से भी पाक हुआ? क्योंकि ये चीज़ें आपको चिमट जाएं तो आपको डरा सकती हैं, आपको गमजदा करती हैं। ये सोचिए कि बाहर निकलते हुए क्यों कहा गुफराना का, कोई इसकी सेंस समझ आती है आपको? गुफराना का इसलिए कि अल्लाह ताला इस जगह में हम तेरा जिक्र नहीं कर सके, क्योंकि यहाँ ज्यादा बात करने का हुक्म नहीं। तो इस पे भी हम अल्लाह की से माफी मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस गफलत के वक्त को माफ कर दे। बैतुल खला में अल्लाह ताला के नाम वाली कोई चीज़ साथ नहीं ले जानी चाहिए। अन अनस इब्ने मालिकिन रदी अल्लाहु अन्हु काल, कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखलल खला वदा खातमहु, रवाहु तिर्मिज़ी व नसाऊ व इब्न माजा। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला में जाने का इरादा फरमाते तो अपनी अंगूठी जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहरीर था उतार दिया करते थे। इसे तिर्मिज़ी, नसाई और इब्न माजा ने रिवायत किया। तो इससे एक बात तो ये समझ में आई कि ऐसी कोई चीज़ जिसमें अल्लाह का नाम हो, मसलन बाज़ लोग लफ्ज़ अल्लाह का लॉकेट पहनते हैं, बाज़ आयतुल कुर्सी लिखा लेते हैं, बाज़ लोगों ने ऐसे लॉकेट पहने होते हैं कि जिसके अंदर पूरा कुरान पाक रखा होता है। तो आप देखिए कि ऐसी चीज़ों को वैसे भी कोई इस्लाम में इतना पसंद नहीं किया गया। अल्लाह ताला कोई गले में लटकाने वाली चीज़ उसका नाम नहीं है, बल्कि उसका वो तो आपके दिल में उसकी मोहब्बत होनी चाहिए। आयतल कुर्सी खुद पढ़ें, आप ना पढ़ें और आपके गले में लटक रही हो, ये भी असल में एक पैरोडी है उन लोगों की जो अपने गले में सलीब पहनते हैं या कोई ऐसी तस्वीरें लगाते हैं, तो इसलिए पसंदीदा नहीं है बहरहाल। लेकिन अगर किसी के पास कोई ऐसी चीज़ है भी तो फिर उसको उतार के बाहर रखिए, और इतनी दफ़ा आप उतारें रखेंगे तो उसमें भी फिर एक एहतमाम करना पड़ता है ना। और दूसरी बात यह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूठी पहनते थे, इस मर्द को अगर कोई ऐसी ज़रूरत हो, ऑफकोर्स सोने की तो नहीं पहन सकते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुलह हुदैबिया के बाद आपने मुख्तलिफ बादशाहों को ख़त लिखे, तो उस दौर का रिवाज क्या था कि बादशाह मुहर के बग़ैर ख़त कबूल नहीं करते थे, एक प्रोटोकॉल की बात थी, जैसे आज आप बग़ैर टिकट के कोई पोस्ट करें तो वापस आ जाए, उस वक्त फिर आपने मुहर नबूवत बनवाई थी और उसमें इस तरीके से लफ्ज़ लिखा हुआ था कि सबसे ऊपर अल्लाह था, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह था, तो फिर आप उसकी स्टैंप लगाया करते थे, उस अंगूठी का इसमें तذکرہ। खुले मैदान में रफ़ा हाजत के वक्त मुंह या पीठ किबले की तरफ नहीं करनी चाहिए, अलबत्ता तहारत खाने के अंदर या दीवार की ओट में ऐसा किया जा सकता है। अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा जलसा अहदुकुम अला हाजतिही फला यस्तक़बिलन्नल क़िबलता वला यस्तदबिरहा, रवाहु मुस्लिम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं अपनी बहन उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रदी अल्लाहु अन्हा के घर की छत पर चढ़ा, तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छत पर रफ़े हाजत के लिए बैठे हुए देखा। आपका मुंह शाम की तरफ और पीठ किबले की तरफ थी। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। और हज़रत हफ्सा जो थी वो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की बहन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मुख्तरमा थी। तो इससे क्या पता चलता है कि पहले दौर में लोग खुले मुंह जब बैठते थे, अब ये एक रिवायत है ना, पहली चीज़ में अब बहुत ही गौर से सुनने की बात है, दो मुख्तलिफ हदीसें हैं। पहली में आपने मना किया, ठीक है, कि आप ऐसा ना करें कि जब भी कोई बैठे तो किबले की तरफ ना करे मुंह। अब दूसरे में वो कहते हैं कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ऐसे बैठे हुए देखा। अब कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना। बस लोग ऐसी ही रिवायतों को पेश करके फिर नाऊसु बिल्ला नबी सल्लम की ज़ात पे भी कीचड़ उछालते हैं और मुसलमानों को भी यही कहते हैं कि देखें कि इस्लाम के अंदर बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है। अब ऐसी दोनों रिवायतों को आप जमा कैसे करेंगे? इसमें मुहद्दिसीन का एक असूल है और वो क्या है कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा कि करो, हुक्म हो गया ना, डू दिस, बात समझिएगा, उम्मत को कहा कि ये करो या ना करो, और दूसरी तरफ ये अमल है कि आपने खुद किया या ना किया, तो दोनों में से हम किस हदीस को लेंगे जिसमें हमें कहा कि तुम करो कि ना करो? बात वाज़ह, कोई खुद कुछ भी कर रहा है तो आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, लेकिन जब कोई आपको कह देता है ना कि तुम ये करो तो फिर आप पे जिम्मेदारी है, एक बात। फिर दूसरी बात ये भी होती है कि जो बात आपने उम्मत के लिए कह दी वो उम्मत के लिए फ़र्ज़ हो गई, उसमें हो सकता है कि उम्मत के लिए वो चीज़ फ़र्ज़ थी, लेकिन अगर किसी मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो अमल लाजिम ना हो। अब यहाँ आप की बैक जो थी किबला की तरफ थी, तो इस दोनों को जमा करके आप देखें जो ऊपर मसला अख़ज़ किया गया है उसकी बात समझ में आ गई, क्योंकि जब आप अपनी घर की छत पे थे तो गोया कि आप खुले मैदान में नहीं थे बल्कि आप अपने एक किस्म के उस दौर के जैसे टॉयलेट थे उसी में थे। तो अगर इस वक्त अगर कोई घर बनाता है तो उसमें अगर कोई ऐसी कैफियत हो जाती है कि मुंह किबले की तरफ हो तो इससे कोई हरज की बात नहीं। हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा इन चीज़ों को इतना अहम समझा जाता है कि मैंने बाज़ लोगों को इस बात पे भी मसला करते देखा है कि आपके कमरों में बेडरूम के पाँव जो है वो किबले की तरफ क्यों हैं, सर किबले की तरफ क्यों हैं। हमारे कल्चर में एक बड़ा मारूफ मसला है ना कि खाना काबा की तरफ पाँव नहीं होने चाहिए, तो आप तो पूरे अरब ही की तरफ नहीं करेंगे जब आप वेस्ट में रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मैंने खुद भी देखी ये चीज़ कई कुछ साल पहले जब मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया उम्रे के लिए थी, तो हम सफ़ा मरवा में थे, तो सफ़ा मरवा आपको पता है कि बाज़ दफ़ा लोग उम्रे के बाद उम्रा वहीं पे ख़त्म होता है और वापस जाते हैं, और बस जहाँ ख़त्म हुआ मरवा पे आप निकल जाएँ, तो एक शख्स थे तो वो जब सही पूरी हुई तो मुंह उनका किबला की तरफ है और पीछे जा रहे थे, यानी बैक नहीं करना चाह रहे थे किबले की तरफ। तब देखिए कि ये तकल्लुफात हैं। اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے دین کو پس پشت نہ ڈالنے والا بنائے، اور لیکن یہ ظاہری تعظیم جو ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ تعلق ان چیزوں کا ہوتا ہے جو انسان عمل میں کرتا ہے. رفع حاجت کے وقت شرم گاہ کو دایاں ہاتھ لگانا منع ہے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا منع ہے. عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. رواه مسلم. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیشاب کرتے وقت کوئی آدمی پیشاب کی جگہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے، نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، اور نہ ہی کوئی چیز پیتے وقت برتن میں پھونک مارے. اسے مسلم نے روایت کیا. یعنی دایاں ہاتھ کھانے کے لیے ہوتا ہے اور بایاں ہاتھ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی چیزوں کے لیے دیا ہے. اور اس میں پھر کہوں گی کہ بچپن سے بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے ماؤں کو بھی اہتمام کرنا چاہیے. جب چھوٹے بچوں کو آپ دھوتے ہیں تو اس وقت بھی ان کو آپ صرف اپنے بائیں ہاتھ سے ہی دھوئیں. اگر بچے کو پکڑنا ہے تو رائٹ ہینڈ سے پکڑیں اور لیفٹ ہینڈ سے اس کو چھوئیں. پھر اسی سے آپ دیکھیں کہ اسلام کتنی باریک باتیں سکھاتا ہے نا. بعض باتیں بعض دفعہ شرم کی وجہ سے یا بعض لوگ اس کو دوسروں کے سامنے نہ شیئر کرنے کی وجہ سے نہیں کرتے، لیکن اسی بات کو سامنے رکھ کے آپ دیکھیے کہ ہمارا دین کتنا مکمل دین ہے. ابھی تک جتنی باتیں اس پوری نشست میں ہم نے کی، اس میں کوئی نماز کی یا اس طریقے سے کسی عبادت کی بات نہیں ہوئی. صرف ہم باتیں کر رہے ہیں وضو کی، طہارت کی، شاور کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین صرف ہمیں نماز روزہ ہی نہیں سکھاتا بلکہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل بھی سکھاتا ہے. اسی لیے ایک موقع پہ ایک صحابی تھے تو کسی یہودی نے ان کو تانا دیا کہ تمہارا نبی تو تمہیں بیت الخلاء میں جانے کی باتیں بھی بتاتا ہے. صحابی کو آر دلائی کہ آپ کا نبی کیا آپ کو اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہے؟ تو بجائے اس کے ان کے کہ وہ شرمندہ ہوتے، انہوں نے کہا ہاں میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا نبی ایسا ہے کہ جو ہمیں بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. کون بتائے گا؟ جس کو آپ سے محبت ہے نا. ماں کو محبت ہوتی ہے تو وہ بچے کو ہر بات بتاتی ہے. اسی طرح طہارت دائیں ہاتھ سے شروع کرنی چاہیے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ان کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحب التیمن فی طہورہ اذا تتخر فی ترجلہ اذا ترجل وفی انتعالہ اذا انتعل. رواہ مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے، کنگھا کرنے اور جوتا پہننے میں دائیں طرف سے آغاز پسند فرمایا کرتے تھے. اسے مسلم نے روایت کیا. تو اب ہم اپنے آپ کو بھی پھر چیک کر سکتے ہیں کہ کیا ہم بھی یہ سارے کام رائٹ ہینڈ سے کرتے ہیں. وضو کی تو بات سمجھ آ گئی، کنگھی کرنے میں سیدھے ہاتھ سے شروع کرنے سے کیا مراد ہے؟ اگر کنگھی شروع بھی کر رہے ہیں تو پہلے رائٹ سائڈ پہ کریں، اور جوتا پہننے میں آپ پہلے دایاں پاؤں پہنیں اور جب اتاریں تو بایاں پاؤں پہلے اتاریں. راستے اور سائے کی جگہ میں رفع حاجت کرنا منع ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا اللائنین قالوا وما اللائنان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں لعنت کے دو کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، لعنت کے وہ دو کام کون کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، لوگوں کی گزرگاہ اور سایہ دار جگہ پر رفع حاجت کرنا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ راستوں میں بھی ایسی گندگی پھیلانا یہ اسلام میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ آپ کبھی کسی ایسی جگہ کا تصور کریں کہ آپ جا رہے ہیں اور راستے میں آپ کو گندگی دکھے۔ انسان تو انسان، جانوروں کو بھی یہ چیز سکھانی چاہیے کہ وہ راستوں میں نہ کریں۔ مجھے انتہائی تکلیف ہوتی ہے کہ آج کل جہاں ہم ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ برف ہے، اتنی خوبصورت صاف ستھری ہوتی ہے، لیکن سائڈ پہ آپ کہیں دیکھیں تو کسی جانور کی گندگی، کہیں کسی کا کچھ۔ تو مجھے اس سے اتنا ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کو بھی تھوڑا سا ٹرین یہ لوگ کریں تو یہ راستے بھی صاف ہوں، کہ بعض وہ واقعی وہ جیسے سفید چیز پہ گندگی زیادہ دکھتی ہے، وہ کیفیت آتی ہے۔ تو میرے ذہن میں جب بھی میں ایسا کوئی منظر دیکھوں تو قرآن پاک کی ایک آیت آتی ہے کہ زہر الفساد، یعنی فساد پھیل گیا، کہ اللہ نے اتنی پیاری صاف ستھری دنیا بنائی لیکن لوگوں کے اعمال کی وجہ سے فساد پھیلتا ہے۔ لیکن اپنے آپ کو تو خاص طور پہ اس میں بہت ہی چیک کیجئے۔ بعض لوگ یعنی سستی کی وجہ سے بچوں کو باتھ روم میں لے بھی جائیں تو نیچے ہی بٹھا دیتے ہیں، یا چلو ادھر سائڈ پہ بیٹھ جاؤ۔ اور بعض لوگوں کو تو سنک کو بھی یوز کرتے دیکھا گیا بچوں کے فارغ کروانے کے لیے۔ تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی۔ جو چیز سننے میں اچھی نہیں لگتی، پھر وہ عمل میں کیسی اچھی لگے گی؟ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔